ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से छठा स्कंद अध्याय 5। प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप, श्लोक संख्या 22। स्वर ब्रह्मणि निर्वात हृषिकेश पदाम्बुजे अखंडम चित्तम आवेश्य लोकान अनुचरत मुनि। स्वर ब्रह्मणि निर्वात हृषिकेश पदाम्बुजे अखंड चित्तम आवेश्य लोकान अनुचरन मुनि। स्वर ब्रह्मणि निर्वात हृषिकेश पदाम्बुजे अखंड चित्तम आवेश्य लोकान अनुचरन मुनि। स्वर ब्रह्मणि निर्वात हृषिकेश पदाम्बुजे अखंड चित्तम आवेश्य लोकान अनुचरन मुनि। और कोई माता जी लोग ईश्वर ब्रह्मणी आध्यात्मिक ध्वनि में निर्वात मन के समक्ष अस्पष्ट रूप से रखते हुए फिर ऋषिकेश भगवान कृष्ण का जो कि इंद्रियों के स्वामी है पदाम्बुजे चरण कमलों पर अखंडम अटूट चित्तम चेतना आवेश्य लगाकर लोकान सारे लोगों का अनुचरत चारों ओर यात्रा की मुनि नारद मुनि ने अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का श्री प्रभुपाद की जय। संगीत यंत्रों में सात स्वरों सारे गाम पदानी का प्रयोग किया जाता है, किंतु ये सातों स्वर मूलतः सामवेद से आए हैं। महामुनि नारद भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए ध्वनियां करते हैं, ऐसी दिव्य ध्वनियों तथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 से वे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करते हैं। इस तरह वे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। हर्यश्यों का उद्धार करने के बाद नारद मुनि ने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थित करके सारे लोकों में अपनी यात्रा जारी रखी। तात्पर्य यहां पर नारद मुनि की अच्छाई का वर्णन हुआ है। वे सदैव भगवान के लीलाओं का कीर्तन करते हैं और पतित आत्माओं का उद्धार करते हैं। इस संबंध में शिलाभक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, नारद मुनि बाजाए बीड़ा राधिका रमन नामे, नारद मुनि बाजाए बीड़ा नाम आमानी उदित हय भगत गीत सामे, नाम आमानी उदित हय भगत गीत सामे, नारद मुनि बजाए बीड़ा राधिका रमन नामे, नारद मुनि बा आमी आधारा बरी से गाना श्रवणा जुगले गिया, आमी आधारा बरी से गाना श्रवणा जुगल भगत जाना सदने नाचे भारी आयापन हीया, भगत सगने नाचे भारी आयापन माधुरी पूरी असब पसी माताया जगत जाने, माधुरी के हवा कांदे के हवा नाचे के हमते माने माने, के हवा कांदे पंच बदन नारद धरी प्रेमर सदन रोल, पंच बदने क कमलासन नाचिया बोले बोला बोला हरि बोला कमला सहस्त्रानन परम सुखे हरि हरि बलि गाय सहस्त्रासन हरि हरि बलि नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम रस सब पाय नाम प्रभावे श्री कृष्ण नाम रसन स्फुरी पुराल आमर आस श्रीरूप पदे आचय इहा भक्ति विनोद दास नारद मुनि बाजाए बीड़ा राधिका रमन नामे ना नारद मुनि बाजाए बीड़ा राधिका रमन नामे नारद नाम आमनि उदित हय भगत गीत सामे इस गीत का तात्पर्य है कि महात्मा नारद मुनि राधिका रमण यानी कृष्ण के दूसरे नाम की ध्वनि निकालते हुए एक तार वाला यंत्र वीणा बजाते हैं। ज्यों ही वे तार झंझारते हैं सारे भक्त अति सुंदर ध्वनि करने लगते हैं। एक तार वाले यंत्र के साथ गायन अमृत की वर्षा जैसा प्रतीत होता है और सारे भक्त भाव विभोर होकर जी भर नाचते हैं। नाचते समय वे भाव में उन्मत्त हो जाते हैं और मानो माधुरीपुर नामक शराब पी रहे हों। उनमें से कुछ चिल्लाते हैं, कुछ नाचते हैं और कुछ खुलकर न नाचने के कारण मन ही मन नाचते हैं। शिव जी नारद मुनि का आलिंगन करते हैं और उनसे भावविश्व वाणी में बातें करने लगते हैं। शिव जी को नारद के साथ नाचते देखकर ब्रह्मा भी यह कहते हुए सम्मिलित हो जाते हैं। सभी लोग उच्चारण करो हरि बोल हरि बोल। स्वर का राजा इंद्र भी क्रमशः प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ हो लेते हैं और नाचने तथा हरि बोल का उच्चारण करने लगते हैं। इस तरह ईश्वर के पवित्र नाम की दिव्य ध्वनि के प्रभाव से सारा ब्रह्मांड भावमय हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब ब्रह्मांड भावमय हो जाता है तो मेरी इच्छा तुष्ट हो जाती है। अतएव मैं श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों पर प्रार्थना करता हूं कि हरे नाम का यह कीर्तन इसी तरह उत्तम ढंग से चलता रहे। ब्रह्मा जी नारद मुनि के गुरु हैं और नारद मुनि व्यास देव के गुरु हैं तथा व्यासदेव माधवाचार्य के गुरु हैं। इस तरह गौड़ीय मध्य संप्रदाय नारद मुनि की गुरु परंपरा में आता है। इस गुरु परंपरा के सदस्यों, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कि दिव्य ध्वनि का कीर्तन करते हुए नारद मुनि के चरण चिन्हों का स्मरण करें, उन्हें हरे कृष्ण की ध्वनि तथा भगवत गीता श्रीमद् भागवत एवं चैतन्य चरितामृत के उपदेशों द्वारा पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए सर्वत्र जाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। यदि कोई वास्तव में नारद मुनि के उपदेशों का पालन करे तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति कर सकता है। यदि कोई नारद मुनि को प्रसन्न कर लेता है तो भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद। वर्तमान गुरु नारद मुनि के प्रतिनिधि होते हैं, होता है। नारद मुनि के उपदेशों तथा वर्तमान गुरु के उपदेशों में कोई अंतर नहीं होता। नारद मुनि तथा वर्तमान गुरु दोनों ही कृष्ण के 19 शिक्षाओं का प्रवचन करते हैं, जिन्हें कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे एवस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चय रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, शोक मत करो। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विभो निर्माय सेते यदमूषु पुरुषम् भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् शोलम् कृषिष्टम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयेम च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादेश भुकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सामान्यतः लोगों में ऐसी भ्रामक धारणा है कि नारद मुनि झगड़ा लगाते हैं। जब कोई झगड़ा करता है तो कोई नारदाई जरूर किया होगा, नारद मुनि झगड़ा लगाते हैं। लोग नारद के अर्थ को नहीं समझते हैं। नारद का अर्थ है, दो शब्दों से नारद बनाया, नार द इति नारद। नार मतलब नारायण भगवान और द मतलब देने वाला। जो नारायण को प्रदान करता है वह कहलाता है नारद। नारद जी का एक ही काम है, लोगों में जाकर के नारायण को देना, नारायण का कथा कहना, कृष्ण भावना भावित लोगों को बनाना ये नारद जी का कार्य है। इस अध्याय में नारद जी के प्रचार का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी जब दक्ष प्रजापति का सृष्टि किए तो उन्होंने कहा कि आप भी अब सृष्टि करो, बाप का बिजनेस बढ़ाओ आगे है? तो प्रजापति दक्ष पांचजनी नाम की पत्नी से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, एक दो बच्चे नहीं, आजकल दो तीन बच्चे होते हैं पेपर में आ जाता है, 10,000 बच्चे। थैंक गॉड आज का गवर्नमेंट नहीं था, नहीं तो हम दो हमारे दो में लग जाते। 10,000 बच्चा पैदा किए। ये जो बच्चे थे इनका चरित्र स्वभाव और मनोवृत्ति सब कुछ एक समान था, इसलिए इन लोगों का नाम पड़ा हरियस्व। पिताजी के आदेश से ये लोग सृष्टि करना चाहते थे। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम लोग भी सृष्टि करो। तो सृष्टि करने से पहले ये लोग सृष्टि समयक सृष्टि संबंधी बातों को जानना चाहते थे और उसके लिए लोग तपस्या किए। यानी संतान उत्पत्ति होती है गृहस्थ जीवन में, तभी तो जन्म लिए थे। तो प्रथम अंश जो है वो है ब्रह्मचारी का, तपस्या का जीवन है। तो वे लोग तपस्या करने के लिए गुजरात में आए, सिंधु नदी के किनारे जहां पर अरब सागर सिंधु मिलता है, वहां पर एक बहुत सुंदर सरोवर है जिसका नाम है नारायण सरोवर। पूरे भारत में चार ऐसे इंपॉर्टेंट सरोवर हैं, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर और मान सरोवर। मान सरोवर कैलाश में है, बिंदु सरोवर भी गुजरात में ही कच्छ में, जहां कर्दम मुनि रोते थे तो उनकी आंखों से अश्रुधारा का भगवान के आंखों के अश्रु, उनके भक्ति से भगवान के आंखों से अश्रु भाव से वो सरोवर बना। पंपा सरोवर साउथ में है, जहां पर हनुमान जी की मुलाकात हुई थी भगवान श्री राम से। और मानसरोवर बोल दिया ना, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, मानसरोवर, पंपा सरोवर, और ऑफ कोर्स सभी सरोवरों का किंग है पावन सरोवर वृंदावन में। तो उस नारायण सरोवर पर ये लोग गए और नारायण सरोवर में डुबकी लगाए, स्नान किए। जब स्नान करके बाहर निकले तो इनका कॉन्शसनेस बिल्कुल क्लीन हो गया। ये ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शस बन गए, अरे हम लोग क्या करने आए हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पिता का आदेश था, गुरु का आदेश था, तो वे लोग अब तपस्या कर, वहां बहुत ऋषि महर्षि लोग भी थे, वहां पर वे लोग तपस्या करने का विचार कर रहे थे। तब तक से वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी उन लोगों के मनोभावना को जान गए कि ये लोग तो भगवान का भजन करना चाहते हैं, लेकिन पिता के दबाव में, पिता के आदेश के चलते ये लोग जबरदस्ती तपस्या करने जा रहे हैं संतान उत्पत्ति करने के लिए, सामान्य एक कर्मी बनने के लिए, संसारिक व्यक्ति बनने के लिए। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उन लोगों को समझाया संसार के विषय में, आत्मा के विषय में, और उसके बाद वे सब के सब 10,000 बच्चे हरे कृष्ण वाले बन गए। हरे कृष्ण, ये है प्रीचिंग। एक साथ में 10,000 लोगों को नारद मुनि भगत बना दिए। कहां है हरदास, है इधर। प्रचार ऐसे होना चाहिए जैसे प्रभुपाद जी। नारद मुनि के प्रतिनिधि, तो होलसेल भगत बना दिए नारद मुनि 10,000 लोगों को। बाद में दक्ष प्रजापति पुनः 1,000 बच्चा उत्पन्न किए, उन लोगों को भी भगत बना दिए। बड़े परेशान हो गए दक्ष प्रजापति के, बदमाश नारद ये तो ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ जीवन के विषय में क्या जानता है, ये हमारे सही बच्चों को ब्रह्मचारी बना रहा है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम एक जगह कमी रुकोगे नहीं। तो नारद जी घूमते रहते हैं। एनीवे जब 10,000 बच्चों को वो कृष्ण भावना भावित कर दिए, तो कल हम लोगों ने सुना था इति व्यवस्थिता राजन हर्यस्वा एक अचेतस प्रयुतम परिक्रम्य पंथानम अनिवर्तनम। संस्कृत में दो शब्द है अथ और इति। जब कोई चीज शुरू होता है तो अथ कहा जाता है और समाप्त होता है तो इति। इति मतलब बीती, जो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। कहें इति व्यवस्थिता मतलब सम्यक रूप से नारद मुनि के द्वारा बताए गए बात को वे समझ गए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संबोधन कर रहे हैं राजन कहकर करके, कह रहे कि महाराज आप भी मेरे बात को समझ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं ये हर्यश्व लोग नारद मुनि की बात को समझ करके एक चेतसह एकांतिक भाव से, अब कोई दुविधा नहीं रह गया, वे लोग वहां से कृष्ण भावना भावित होकर के नारद जी से विदाई लिए, नारद जी का परिक्रमा किए ताकि उनका जो उपदेश है उनके दिल में बना रहे। और वे कहां गए, कहते हैं पंथान अनिवर्तनम, उस रास्ते को अपनाए जहां से पुनः वापसी नहीं होता है, अनिवर्तनम, जहां जाने के बाद नहीं आना पड़ता है। और वह स्थान क्या है, वैकुंठ, यद गतवान अनिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, यानी वैकुंठ जाने का रास्ता हुए लोग पकड़ लिए, यानी वहीं रह करके भजन करने लगे, वहां से कहीं चले नहीं गए, उस रास्ता को अपना लिए, कृष्ण भावना भावित हो गए। अब नारद जी का अपना काम हो गया, नारद जी अब चल दिए वहां से। तो कहें अब आज का श्लोक है, कहते स्वर ब्रह्मणी निर्भात ऋषि के स पदाम्बुजे अखंडम चित्तम आविश्य लोकान अनुचरण मुनि। नारद मुनि का दो काम है, एक काम है भगवान के लीलाओं का गुणानुवाद करना, गुणगान करना, और दूसरा काम है जन कल्याण करना, पतित आत्माओं का उद्धार करना। और इस दो काम के लिए भगवान इन्हें वीणा दिए, ये दो काम करने के लिए। इसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है नारद जी के वीणा का, लिंग पुराण में इसका वर्णन किया गया है। नारद जी स्वयं इसको स्वीकार की, जब व्यासदेव से बात कर रहे थे तो कहते हैं देवदत्ता इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानम चराम्यहम्। व्यासदेव जब पूछे कि महात्मा आप क्या करते हैं, तो कहते हैं क्या करता हूं, ये देख रहे हो वीणा, कहते हैं देव दत्ताम इमाम वीणा, ये जो वीणा है इसको हमें भगवान ने दिया था, और वीणा ही नहीं स्वर ब्रह्मा विभूषिता, ये जो स्वर हैं सारे गम पदनी, इसका भी ज्ञान भगवान हमको दिए, विभूषिता। अब मैं क्या करता हूं, कहते मूर्छयित्वा हरिकथाम, मैं इसी वीणा के ऊपर भगवान का गुणानुवाद करते हुए गायमानो चराम्य हम, मैं विचरण करता रहता हूं। यही है परमहंस गति। परमहंस गति जय श्री श्री घोर निदाय राधारास बिहारी सीताराम चरण मान की जाए। परमहंस लोग एक स्थान पर नहीं रहते हैं, उनके पैर में व्हील लगा रहता है, घूमते रहते हैं। यह सुकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेह प्रव्रज स नरोत्तम। जो नरोत्तम होता है, जो परमहंस होता है, उसमें दो चीज होता है और एक चीज वो करता है, उसमें निर्वेद उत्पन्न होता है, यानी संसार से अनासक्ति। मैत्रेय जी कहते हैं कि अनासक्ति कैसे उत्पन्न होती है, कहते हैं यह शोकात परतो वेह। या तो अपने आप बड़ी सुंदर पत्नी थी, मर गई, एक्सीडेंट हो गया, बच्चे सब मर गए, तो बैराग रहे संसार कुछ भी नहीं, बैराग हो गया। जब ठोकर लगा तब यह शोकात परतो वेह, या दूसरे के द्वारा समझाने पर, जैसे नारद जी समझाए इन लोगों को, जात निर्वेद आत्मवान। जब उस व्यक्ति में निर्वेद या संसारिक अनाशक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो वह व्यक्ति आत्मवान हो जाता है, सेल्फ रियलाइज होता है। हृदय कृत्वा हरिम गेह, अपना जो हृदय है, जो आज हमारे वासना का स्थान है, उस हृदय में भगवान का वह निवास स्थान बना देता है। हृदय कृत्वा हरिम गेह, और करता क्या है, प्रव्रज स नरोत्तम, परिव्राज का आचार्य बनकर के परिभ्रमण करता है, वह व्यक्ति नरोत्तम है। तो नारद जी नरोत्तम है, कहते गायमान चरामि हम, और यहां पर कहते हैं लोकानाम अनुचरण मुनि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वहां पर डायरेक्टली नारद जी कहते हैं व्यासदेव से, और यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित से। यह है परंपरा सिस्टम, जो नारद जी बात बताए वो सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान का गुणानुवाद करते हुए वीणा बजाते हुए नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। वीणा बजाते हुए भगवान का गुणानुवाद करते हुए लोकान अनुचरण मुनि, जन कल्याण के लिए नारद जी विचरण करते रहते हैं। तो देवदत्ता इमाम वीणा, ये वीणा भगवान ने दिया था। लिंग पुराण में इसका वर्णन आता है, जिसको श्रीपाद जी गोस्वामी उसका अनुमोदन करते हैं। श्री कृष्ण देवो भगवान स्वर ब्रह्मा विभूषिता कल्पादौ दत्तमान वीणा ऋषये नारदस्य वै। कहते श्री कृष्ण देवो भगवान, भगवान श्री कृष्ण स्वर ब्रह्मा विभूषिता, ये जो वीणा है और वीणा के साथ साथ स्वर ब्रह्म यानी गाने का जो मंत्र है वो भी कल्पादौ, कल्प के आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में दत्तवान दिए इस वीणा को, किसको, ऋषय नारदाय वही, वही मतलब निश्चय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भगवान ने इसको दिया। श्री जी गोस्वामी इसका अनुमोदन करते हैं। लेकिन स्कंद पुराण के केदारखंड में वर्णन किया गया है कि यह वीणा नारद जी को भगवान शिव ने दिया। राग ज्ञानम तथा वीणा नारदाय महेश्वर प्रदात्त तत् तपसा प्रीत पार्वती पति शंकर। तो स्कंद पुराण के केदारखंड में वर्णन किया गया है कि राग ज्ञानम, राग का ज्ञान, तथा वीणा, और वीणा नारदाय, नारद को दिए, कौन, महेश्वर प्रदात्त प्रकृष्ण पेड़ से दिए, क्यों दिए? तत् तपसा प्रीत, नारद मुनि तपस्या में लीन थे और तपस्या से संतुष्ट होकर के पार्वती पति भगवान शंकर ने इसको दिया। त्रिपाजी गोस्वामी कहते हैं इसमें कल्पांतर भेद है, दूसरे कल्प में दिए होंगे, लेकिन इस कल्प में जो अभी नारद मुनि वीणा लेकर चलते हैं, कल्पादौ कल्प के आदि में जो वीणा उनको दिया गया था वह वीणा भगवान के द्वारा दिया गया। नारद जी यहां पर कहते देवदत्ता, देवदत्ता से दोनों आ जाएगा, भगवान शिव भी आ जाएंगे और कृष्ण भी आ जाएंगे, इसीलिए आचार्यगण इसको क्लियर किए हैं और स्पेशली श्रीपाद जीव गोस्वामी इसको क्लियर किए हैं। अब ये जो स्वर है ये साक्षात भगवान से निकला हुआ है, इसलिए यह भगवान से अभिन्न है, इसे स्वर ब्रह्म कहा गया है, स्वर ब्रह्म कहा गया है, भगवान से अभिन्न है, और इससे जो वाणी निकलती है वह भी भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वीणा से वाणी क्या निकलती है? राधिका रमण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है, ये कोई मटेरियल साउंड वाइब्रेशन नहीं है, ये ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है। पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्वा नाम नामिनः, भगवान से अभिन्न है यह भगवान का नाम। तो वीणा भी ट्रांसडेंटल है क्योंकि भगवान ने दिया था, जैसे अर्जुन का रथ ट्रांसडेंटल रथ था, अर्जुन का शंख ट्रांसडेंटल था, पांच जन्य ऐसी के सौ देवदत्त धनंजय, ऐसे दिव्य शंख प्रदुब्ध थौ, दिव्य शंख बजाए वे लोग, वो सब दिव्य था, वैसे ही वीणा भी दिव्य है। और जो स्वर है जो वीणा से निकलता है वाणी, वो भी दिव्य है। यहां पर साम वेद में इसका विशद वर्णन किया गया है, विरागो गोस्वामी साम वेद से उद्गृत किए हैं, बहुत बड़ा सेक्शन है, तो यहां पर कहते हैं षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धौवता निषाद सत्यमी सप्त तंत्री कंठोतिता स्वरा। ये सात छह प्रकार के स्वर हैं, षड्ज ऋषभ गांधार मध्यमा पंचमा धैवत और निषाद, सा रे ग म प ध नि है, सप्ततंत्री इस सात तंत्र वाले। तो जो सा है वो षड्ज है, जो रे है वो ऋषभ है, जो ग है वो गांधार है, म है मध्यमा, प है पंचमा, ध है धैवत और नी है निषाद। तो ये सप्त तंत्र हैं। अब यहां पर अन्य वर्णन किया गया है इन सातों का, हाँ हारमोनिया भी सीख रहे हैं असीम जी, कहते हैं षड्ज ऋषभक गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद च इत्यमी सप्तम तंत्री कठोत स्थिता स्वरा, कंठ में स्थित ये सात स्वर हैं। सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यमा, प पंचमा, ध धैवत और नी निषाद। मैं दे दूंगा इसको। अब बहुत सुंदर सामवेद में इसका वर्णन किया गया है कि कैसे गाना में इसको गाया जाता है। षडज बदेन मयूरोही, जो मयूर जो है वो षडज स्वर में गाती है। ऋषभम चातको बदेत, जो चातक हैं वो ऋषभ स्वर में गाते हैं। अजा बदति गांधार, और बकरा और बकरी वो भी स्वर गाते हैं, बकरा बकरी का भी स्वर है, वो गांधार स्वर में गाते हैं। क्रौंचौ बदति मध्यमा, और जो कौवे हैं वे मध्यमा में गाते हैं। पुष्प धारणे काले कोकिल पंचम बदेत, पुष्प धारणे काले यानी फागुन का महीना, राइट, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के समय कोयल जो है वो पंचम स्वर में गाती है। दर्दुरो धैवत च एव निषाद च बदे गज, और जो मेढक हैं वो धैवत स्वर में गाते हैं, यानी ध वाला धैवत स्वर में गाते हैं। एव निषादम च बदे गज, और गज यानी हाथी जो हैं वो निषाद स्वर में गाते हैं। हास्य श्रृंगार यो कार्यो स्वरो पंचम मध्यमौ, सजर षड ऋषभो तथा गेयो वीर रौद्रद अद्भुते रसे, गांधारश्च निषादश्च कर्तव्यो करुणारसे, धैवतश्च कर्तव्यो विभस्ते च भयानके। इस प्रकार से कब कब दिन में कौन रस हो गाया जाता है पूरा सामवेद में इसका वर्णन किया गया है। तो अब उसको यहीं छोड़ते हैं, सामवेद नहीं पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, और न तो हम हारमोनियम और कुछ सीख रहे हैं। लेकिन इससे एक बात जरूर सीखने को मिलता है, स्वर ब्रह्मणी निर्भात। नारद जब वहां से निकले तो वीणा के ऊपर तान छेड़ दिए, निर्भात। भाता मतलब प्रकाशित करना, निर्भात मतलब निकृष्ट रूप से वाइब्रेट करना शुरू किए। क्या भगवान का गुणानुवाद, नारद मुनि बजाए वीणा। और जब भगवान का गुणानुवाद कर रहे थे तो ऋषिकेश पदाम मुझे, कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश, जो हमारे इंद्रियों के अधिकारी हैं। ऋषिकेण ऋषिकेश, हमारे इंद्रियाधिपति जो हैं उनके चरण कमलों में मन को एकाग्रित कर कर करके, और वे भगवान का गुणानुवाद करने लगे। अखंड चित्तम आवेश्य, अखंड चित्तम एकांती कहा उसे, अपने चित्त को भगवान में आवेशित कर दिए, लगा दिए। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो हम लोगों को भी अखंड चित्तम आवेश्य होना चाहिए। चित्त का मतलब होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं चित्त मतलब मन, चित्त मतलब बुद्धि, चित्त मतलब कॉन्शसनेस, चित्त मतलब हृदय, और चित्त मतलब इंद्रियां। इन पांचों को चित्त कहा गया है। तो चित्तम आवेश्य, तो इन पांचों को अखंड भाव से भगवान ऋषिकेश के चरणों में लगा कर करके तब भजन करना चाहिए। यानी जब हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रायः लोग प्रश्न ऐसा करते हैं, प्रभु जी मैं बहुत दिन से जप करता हूं लेकिन जब मैं करने बैठता तो मन भागने लगता है चारों तरफ। ऐसे मन नहीं भागता, कहीं अटक गया है, सोच रहा हूं कुछ।
जब जॉब करने बैठता हूं तो मन भागने लगता है, क्या करना चाहिए। बात सही है कि मन संसार में लगेगा, जब चोर सिपाही को देखेगा तो क्या करेगा, भागेगा ना। तो हर एक किस्म आमंत्र सिपाही है और मन का जो विषय वासना वो चोर है तो भागता है। तो पकड़ने का तरीका क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हम गाएं उसको सुने, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करें। यदि हम नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि हम सुनेंगे तो आप देखेंगे कि मन कहीं नहीं भागेगा, मन वहीं रहेगा। तो सीक्रेट है नाम जप करने का सुनना, जो भी नाम जप करें सुने। और इस श्रवण विधि के द्वारा ये याद करने का तरीका है, सुनना जो है याद करने का तरीका है। भगवान को हम याद करेंगे, जब भगवान को याद करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? याद का उल्टा क्या होता है? याद का उल्टा क्या होता है? दया। जब भगवान को याद करोगे तो भगवान अपना दया दिखाएंगे। बिना भगवान के कृपा से मन अपने बस में नहीं होगा। चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलवम दृढ़, अपने मन से नहीं होगा। जब भगवान की दया होगी, भगवान की कृपा होगी, तब ही मन बस में होगा। तो भगवान को याद करने का तरीका है नाम लेना और सुनना, श्रवणम कीर्तनम। नाम का बहुत महिमा है। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं, रघुप गोस्वामी कहते हैं कि पता नहीं नाम में कितना रस भरा हुआ है। दो अक्षर का एक कृष्ण नाम है कि जब मैं जिह्वा पर गाता हूं, तुंडवतांडवनी वितनुते तुंडावली लब्धयेत, जब मैं गाता हूं तो मन करता हजारों हजार जिह्वा आ जाए, और जब कान में प्रवेश करता है तो मन करता है हजारों हजार कान आए। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों में वो रस उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग जब नाम जप करते हैं तो मन को भगाते रहते हैं, सुनते नहीं है। माला जप होता है, मन नाम जप नहीं होता है, माला जप होता है, माला आगे खींच देता है। नाम जप सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है यज्ञ। कान रूपी कुंड में डालो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो नारद जी एक काम करते थे, वह वीणा के ऊपर एकांतिक भाव से भगवान ऋषिकेश के चरणों का ध्यान करते हुए उनका गुणानुवाद करना, पहला काम। और दूसरा काम करते थे लोकान अनुचरण, संसार में विचरण करते थे, चारों तरफ विचरण करते थे प्रचार करने के लिए। यही है परंपरा, परंपरा है प्रचार करना। भगवान का प्रतिनिधि होने का मतलब भगवान को प्रतिनिधित्व करना, उनके संदेश को लोगों में सुनाना। भगवान चैतन्य महाप्रभु करते हैं, जा रे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, परिभ्रमण करो, घूमो जाओ, पृथ्वी ते आज जौत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोर नाम। आज इस हरिनाम के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। हम लोग यदि जाकर के शहरों में गांवों में जहां भी लोग मिले, जो व्यक्ति मिले, जैसा भी व्यक्ति हो, यदि हम नारद मुनि का अनुसरण करते हुए लोगों में कृष्ण भावना का प्रचार करेंगे तो नारद मुनि की कृपा अवश्य ही हम लोगों को प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी।
आज संसार में बहुत से जीवात्माएं हैं जो तड़फ रहे हैं, जो दुखी हैं। उन लोगों को कृष्ण भावना देने की आवश्यकता है। हम लोगों के कंधे पर एक उत्तरदायित्व है, हम लोगों को उस उत्तरदायित्व को निभाना है। वी ऑल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे नारद मुनि, भगवान ने उनको बिना दिया तो नारद मुनि ऑब्लाइज हो गए, समझे कि मेरा उत्तरदायित्व है, भगवान ने हमको दिया है, और अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए नारद मुनि सर्वत्र प्रचार करते हैं। वैसे ही हम लोगों पर उत्तरदायित्व है नारद मुनि का, भगवान कृष्ण का, ब्रह्मा जी का, नारद मुनि का, शिष्य परंपरा में आते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का, भक्ति विनोद ठाकुर का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का, प्रभुपाद जी का, कृष्ण भावना भावित जितने भक्त लोग हैं इस्कान से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रीगेशन डिवोटी हो चाहे फुल टाइम डिवोटी हो, सबका ऑब्लिगेशन है, सबके ऊपर उत्तरदायित्व है। और उत्तरदायित्व वो क्या है, चेतन महाप्रभु ब्लैंक ऑर्डर दिए हैं सबको, जा रहे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, लोकान अनुचरण, लोगों में जाइए और कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु को लोगों को दीजिए, कृष्ण को लोगों को दीजिए, जो भी हम जानते हैं उतना ही दें। यही है रिप्रेजेंटेटिव का काम, उन शिक्षाओं को देना, लोगों को बताना कि कैसे लोग भगवान का प्रिय हो सकते हैं। लोग भगवान, अपना मन भगवान में लगाएं, मन मना भव, मद भक्तो भगवान का भक्त बने, मद्याजी जो कुछ पूजा पाठ करते हैं कृष्ण के को अर्पित कर करें, माम नमस्कुरु, और नहीं तो भगवान को कम प्रणाम तो करें। आजकल लोग ये भी भूल गए हैं, भगवान को प्रणाम करना लोग भूल गए हैं। मंदिर में मैं देखता हूं बहुत लोग आते हैं, लेकिन देखते हैं कितना सुंदर है, प्रणाम नहीं करते हैं। ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है कि जब कोई हमसे बड़ा व्यक्ति हो तो उसे हम प्रणाम करें। जब उसको प्रणाम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका हाथ उठ जाएगा आशीर्वाद देने के लिए। जे आप नमस्कार करो उसका हाथ उठ जाएगा, उठाना नहीं पड़ेगा, अपने से उठ जाएगा। वैसे ही भगवान के पास आए, भगवान को प्रणाम करेंगे तो भगवान का हाथ उठ जाएगा आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन आए और इंस्पेक्टर ऐसा इंस्पेक्शन कर चलेगा, हाँ बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ऐसे, तो भगवान का ठीक है जाओ। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, ये दुख की बात है। ये सभ्यता संस्कृति खत्म होती जा रही है। कानपुर में एक लेक्चर ऑर्गेनाइज हुआ था वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर, आजकल वोट का दिन है ना, तो वोट फॉर इंडिया, तो मुझे लेक्चर देना था। तो मैं कहा कि भारत भूमिते हैलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। वोट फॉर इंडिया मीन्स बी इंडियन, एंड व्हाट इज इंडियन, कर परोपकार, उपकार नहीं, रोटी कपड़ा मकान मत किसी को दो, परोपकार करो, भगवान के धाम उसको भेजो, नारद जी का काम करो, कृष्ण भक्ति का उनको ज्ञान दो, ये है परोपकार, ये है परोपकार। आज भारत नष्ट होते जा रहा है। भारत मतलब भारत, रत मतलब जो लगा रहता है, और भा मतलब भासती, प्रकाश देने में, जो प्रकाश देने में लगा रहता है वह है भारत, और जो यह काम करता है वो कहलाता है भारतीय। तो प्रकाश क्या है, कृष्ण सूर्य सम, माया हो अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, कृष्ण प्रकाश है, तो हमें चाहिए भारतीय होने के नाते कि लोगों को कृष्ण भावना दें, कृष्ण भावना दें। आए पश्चात सभ्यता संस्कृति को अपना कर करके साइंस को भगवान बना करके हम सब लोग मर रहे हैं। आज खाने के लिए भोजन भी नहीं है। हम लोग जो भी खाते हैं चावल दाल, चाहे बॉम्बे खाओ, चाहे दिल्ली खाओ, चाहे कलकत्ता खाओ, सब एक ही टेस्ट है। सब सब्जियों में एक ही टेस्ट है, क्योंकि सब्जी है ही नहीं, ये तो केमिकल है। पहले था अलग अलग घरों में अलग अलग, एक ही सब्जी का अलग टेस्ट था। अबे नमक तेल और मसाला से कहां टेस्ट बनेगा, सब्जी में टेस्ट तो है ही नहीं। ये किसका देन है? ये सो कॉल्ड साइंस का देन है। पृथ्वी में उर्वर शक्ति नहीं रह चुकी है, दूध नहीं मिल पाता है। कहते हैं लो शुद्ध गाय का दूध, अरे इतनी गाय तो खत्म हो गई, गाय है ही नहीं, कहां है? तो शुद्ध गाय का दूध कहां से आ रहा है? ये यूरिया का दूध आ रहा है, कहते हैं शुद्ध गाय का दूध, संतोष रखो। तो भारत नष्ट हो रहा है, बचाना यदि है तो नारद मुनि का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करना पड़ेगा और कृष्ण भावना का प्रचार करना पड़ेगा। दैट इज वोट फॉर इंडिया। लोगों को भारतीय बनाओ, कृष्ण भावना भावित बनाओ। मैं प्रायः ये उदाहरण दिया करता हूं कि एक जमाना था कि लोग घर के बाहर लिखते थे अतिथि देवो भव, याद है? बाद में लिखने लगे शुभ लाभ, बाद में आ गया सुस्वागतम, और आज आ गया है कुत्तों से सावधान, फ्रॉम गॉड टू डॉग। पहले गॉड थे अतिथि देवो भव, गॉड, अभी कुत्तों से सावधान। ये भारत कहां चला गया है? यदि भारतीय बनना है तो सब लोगों को भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। हमारे राधा जीवन प्रभु यहां बैठे हुए हैं, ये भारत का काम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए उस चीज को देने के लिए जो कोई नहीं दिया था, अनर्पित चरिम। मैं गौर पूर्णिमा को यह श्लोक लिया था, अनर्पित चरिम चिरात कृणया अवतीर्ण कलो। अब समय आ गया है कि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई करें। कैसे? बपू और वाणी दोनों का सेवा कर कर गए। वाणी का सेवा प्रचार के द्वारा और बपू का सेवा वैष्णव का सेवा कर कर गए। मंदिर प्रचार का बहुत बड़ा केंद्र है। आप कितने बहुत बड़े संत हो, सेल्फ रियलाइज हो, पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करो, कितने लोग आएंगे? बहुत कम लोग। लेकिन मंदिर में हजारों लोग आते हैं। मंदिर प्रचार का सबसे बड़ा केंद्र है। जब ये इतना बड़ा मंदिर नहीं था, ये शिव मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, ये जीव गांव का पुराना मंदिर है, 2-4-5 लोग आते थे, कोई आता भी नहीं था। अब इतना बड़ा मंदिर हो गया, लाखों लोग यहां पर आते हैं, तो 2-10 हजार वहां भी चले जाते हैं, हैं? लाखों लोग क्यों आते हैं? ये पहले छोटा मंदिर था तो 100-150 आ गए। एक बार जन्माष्टमी में 100 लोग आए थे, प्रभुपाद जी बड़े खुश थे कि 100 लोग आ गए, हैं? आज जन्माष्टमी में लाखों लोग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? इतना बड़ा मंदिर होने से। तो नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न देखा था, भक्ति विनोद ठाकुर परंपरा प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि मायापुर में अद्भुत मंदिर बने। जैसे जितने भी मुस्लिम बंधु लोग हैं वो मक्का जाते हैं, कहते हैं हमारा जीवन सफल हो गया, मक्का चला गया तो जीवन सफल हो गया, वैसे ही मायापुर चंद्रोदय मंदिर जब बन जाएगा तो विश्व के कोने कोने से लोग आएंगे,
एक बार आएंगे कहें हमारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि मैं मायापुर गया। मायापुर विश्व का केंद्र है, विश्व का केंद्र है मायापुर, जहां पर गौरचंद्र आए हुए हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के वाणी और बपू दोनों का यदि सेवा करना है तो सब लोगों को एकांतिक भाव से मायापुर मंदिर बनाने में जुड़ जाना चाहिए। अखंड चित्तम आवेश्य, एकांतिक भाव से, क्योंकि मंदिर प्रचार का केंद्र है। मंदिर कोई ऑर्डिनरी स्थान नहीं है, प्रचार का केंद्र है। बहुत प्रचार होता है, पुस्तक वितरण होता है, प्रसाद ग्रहण लोग करते हैं, साधुओं का संगति होता है, भगवान का लोग दर्शन करते हैं। और ये पवित्र स्थल ही है, यहां पर आते ही लोगों को शांति मिलती है। बहुत लोग कहते हैं प्रभु जी जब मंदिर जाते हैं 5 मिनट बैठते हैं तो बड़ा शांति मिलती है, क्योंकि यहां पर अहर्निश हरिनाम कीर्तन होता है। तो जो नाम है ना, ध्वनि है, वो दीवाल के एक एक पिलर में वो ध्वनि है, और ये ध्वनित होता है, बाहर निकलता है तो हमारे कान में आता है, जब सुनते हैं तो शांति मिलती है। ये पत्थर शांति नहीं देती है, शांति क्या देता है, हरिनाम जो यहां पर होता है। तो इस कान के जो मंदिर है उसमें हरिनाम होता है। तो महाप्रभु का जो ये मंदिर बन रहा है मायापुर में, आप कितने लोग देखे हैं मायापुर, कितने लोग गए हैं अभी तक? जो लोग नहीं गए हैं होकर के आओ एक बार, देखो विशालकाय मंदिर बन रहा है। सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए नारद मुनि का प्रतिनिधि होकर के, जैसे यहां पर अखंडम चित्तम आवेश्य लोकान अनुचरण मुनि, लोक कल्याण के लिए एकांतिक भाव से नारद मुनि लगे हुए थे प्रचार करने के लिए। तो ये मंदिर प्रभुपाद जी बनाए। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि इंडिया में बहुत मंदिर है, आप भी मंदिर क्यों बना रहे हैं? प्रभुपाद जी का किसने काम में मंदिर बना रहा हूं, मैं तो हॉस्पिटल बना रहा हूं। प्रभुपाद जी का मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं, मंदिर नहीं बना रहा हूं। ये जो बाहर का हॉस्पिटल है वहां तो सांसारिक देह का रोग से छुटकारा होता है, लेकिन मंदिर जो है वहां से भवरोग का दवा मिलता है। किसी हॉस्पिटल में भवरोग का दवा नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर ही मिलेगा। NH6 औषधि माया नासी बार लागे, हरि नाम महामंत्र लव तुम ही मांगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु लाए हैं ये औषधि, लाए हैं, और वो मिलता है मंदिर में, इस्कान के मंदिरों में। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं। तो ये सब छोटा छोटा हॉस्पिटल है, मायापुर में बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, सबके लिए स्थान है। प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद बिल्ड ए हाउस फॉर होल वर्ल्ड कैन लिव पीसफुली, तो इस्कान वह घर है। तो मायापुर वह मंदिर होगा जिसमें समस्त रोगों का दवा मिल जाएगा, भवरोग का दवा, ठीक है ना? तो सब लोगों को अब कमर कसना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। अभी अभी कुछ समय के बाद हम लोग जाएंगे, यहां ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं अब मायापुर के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि जुहू हमारा ऑफिस है, तो ऑफिस का काम अब जुहू को करना पड़ेगा। ये बिल्डिंग क्या करेगा, आप हम लोग करना पड़ेगा ना। ऑफिस मतलब कुछ काम करने वाले हो ना, कोई काम करने वाला नहीं हो तो ऑफिस का है, उसे ऑफिस कहते हैं। ऑफिस तब होगा जो कुछ काम करने वाले लोग हैं। तो हम सब लोगों को एक कार्य करना है, नारद मुनि का अनुसरण करते हुए उनके परंपरा में आकर करके, और यह कार्य करना, अखंड चित्तम आविश्य, एकांतिक भाव से लग जाना है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? माइक दे 5 मिनट। कोई प्रश्न है? हाँ बोलो, जोर से बोलो, पीछे बिल्कुल पीछे है लास्ट में।
हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लेक्चर दिया आप। तो आप बताएं जिसे क्लास में, कि आज के समय में कोई ऐसी वेजिटेबल जो मिलता है एक ओनली केमिकल है। सो जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ये डॉक्टर नुर्मल बरलाग, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था और भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए ये कई काम किए थे। वो कहा था अपने वाणी में कि मैं उन लोगों को खाना दे रहा हूं, भूखा लोगों को खिला रहा हूं ये ग्रीन रिवोल्यूशन के माध्यम से। तो जैसा कि हरियाणा आदि जो हमारा स्टेट है, वहां पर जब गेहूं की ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था कि ज्यादा प्रोडक्शन आया था, तो उसी प्रकार आज की तथाकथित साइंटिस्ट या दार्शनिक ये दावा करते हैं कि हम लोगों को बचा रहे हैं इस भुखमरी से। तो हम लोग हरे कृष्ण
मार रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं। कितनी बीमारी हो रही है। पहले लोग सट्ठा पर पट्ठा होते थे, आज सट्ठा पर लट्ठा लगता है। पहले 60 साल पर लोग जवान होते थे, अब 60 साल में स्मशान घाट जाते हैं। पहले बाप के सामने बेटा नहीं मरता था, अभी तो बाप के सामने सब मर रहे हैं। स्वयं साइंसिस्ट स्वीकार कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, वही लोग बात कर रहे हैं, हम तो नहीं बात कर रहे हैं ना। ग्लोबल वार्मिंग तो वही बात कर रहे हैं ना, ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, इतना वार्मिंग हो, कितना पोल्यूशन हो गया है। अरे एक आकाश शुद्ध था, वो भी आजकल पोल्यूटेड हो गया मोबाइल फोन से। आप फोन करो कहीं पर, अभी क्या है, कंजेस्टेड है, क्या बोलता है वो मोबाइल वाला, एक मैसेज आता है ना, नहीं नेटवर्क बिजी है, कंजेस्टेड है, वो आकाश भी गंदा कर दिए। पानी तो गंदा किए, पृथ्वी गंदा किए, आकाश भी। पहले का साइंस था, देखो नारद मुनि का ही ना, इनके खड़ाओं में ऐसा अंतर ना, डीजल ना पेट्रोल कुछ भी नहीं, कहीं जा सकते थे। ये साइंसिस्ट लोग ये साइंस क्यों नहीं पढ़ते हैं जिसमें कोई खर्चा ना करना पड़े। पहले पहाड़ था, बैलेंस था, इतना भूकंप क्यों आ रहा है, पहाड़ तोड़ करके बंगलो बना रहे हैं। साइंस ने डिस्ट्रॉय किया है। ये न्यूक्लियर बम फूटेगा तो क्या होगा, पहले ऐसा नहीं था। पहले न्यूक्लियर बम था, लेकिन यदि डिसाइड किया कि यहां से इस व्यक्ति को मारना तो उसी को मारेगा, स्त्री को नहीं मारेगा, बुड्ढों को नहीं मारेगा, बच्चों को नहीं मारेगा। ये न्यूक्लियर बम कहीं डाल दो, वो नहीं देगा कि हरे कृष्ण वाले कौन है, सबको मार देगा, खत्म कर देगा। तो साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मच 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 मर हायर। आज भी आप ऑर्गेनिक फूड उत्पन्न करो और वो सब्जी खाओ और बाजार का सब्जी, देखो कितना अंतर है टेस्ट में। चलो सब उड़ीसा चलते हैं, उड़ीसा चलेंगे, जगन्नाथ जी के प्रसाद खाएंगे। हाँ बात सही है, क्योंकि यहां खाद डालते हैं ज्यादा। और कोई प्रश्न, इसका एक बार बाद में लेक्चर करेंगे। उधर माइक माइक, ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद राहा जीवन प्रभु कुछ बोलेंगे, बाद में चलेंगे हम लोग।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, कैन आई आस्क द क्वेश्चन इन इंग्लिश?
एनी लैंग्वेज यू आस्क, कृष्णा नोज ऑल द लैंग्वेज।
ओके, आई जस्ट वांटेड टू नो, शुड वी ब्लेम साइंस और शुड वी ब्लेम द यूजर्स ऑफ साइंस? किसको दोषी कहें? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो साइंस and there is material science, the users of both, they can misuse and misinterpret.
See, first of all, we must know what is science. Science means to know things as they are, means connection, sambandha, abhidheya, prayojan. Yadi sab log, Hindi bolu, Angrezi bolu? यदि सब लोग जान जाए कि सब चीज के ओरिजिन भगवान है, अहमेवा अहमेवाग्रो समेवाग्रो जन्मादश्यतम, और सब लोग भगवान को स्वीकार कर करके कृष्ण कॉन्शियसनेस के साइंस को अपनाएंगे, देन होल वर्ल्ड विल बी हैप्पी। लेकिन ये साइंसिस्ट लोग भगवान को हटा कर करके अपने भगवान बन जाते हैं और अपने स्पेकुलेशन से ये वस्तुएं बनाते हैं जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है। लगता है वैसा लेकिन है नहीं, जैसे आर्टिफिशियल एप्पल, एक नेचुरल एप्पल लीजिए एक प्लास्टिक का एप्पल, देखने में बिल्कुल पक्का, दोनों एक समान, लेकिन एक नेचुरल है। तो इन नेचुरलिटी को खत्म कर रहे हैं, देयर फॉर वी आर कंडेमिंग देम। प्रभुपाद जी के दो ही एनिमी थे संसार में, और कोई नहीं था, एक साइंसिस्ट और एक मायावादी, क्योंकि ये दोनों भगवान के काट रहे थे, भगवान खत्म करना चाहते थे। साइंसिस्ट भी कहते हैं देयर नो गॉड, यू कैन डू एवरीथिंग, राउंड बन गए हैं हम, स्वर्ग तक चले जाएंगे श्री बना कर करके। और मायावादी भी कहते हैं हम सब लोग भगवान है, भगवान कहां है, कोई भगवान नहीं, देयर ओनली टू एनिमी ऑफ होल सिविलाइजेशन, मायावादी एंड साइंसिस्ट। ओके, नाउ राधा जीवन प्रभु को दीजिए।